ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो आपको शायद पता हो कि आज दो भक्त प्रवचन देंगे, थोड़ी देर के लिए मैं दूंगा, उसके बाद भक्ति बृहद भगवत महाराज देंगे, दोपहर को भी लेक्चर होगा। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। क्या है आज राशि का अर्थ क्या है? सबसे पहले हम एक श्लोक पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम से। श्लोक है 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 28वां श्लोक, और उसके पश्चात हम थोड़े श्लोक पढ़ेंगे चैतन्य चरितमृत से। ये पढ़ना आवश्यक है क्योंकि हम ये स्थापित करना चाहते हैं राधा रानी जी कौन है। साधारण समाज में लोग राधा रानी को नहीं समझ पाते। आप देखते हो कई भौतिक कथाकार सीधा जब कथा करते हैं रासलीला की कथा करते हैं, पर व्यास शुक्रदेव गोस्वामी ने पहले भगवान की बाल लीला प्रकट की है जिसमें ये स्थापित हुआ है कि परम भगवान कौन है, फिर आगे जाकर रासलीला। कई बार लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत में तो राधा रानी का वर्णन है ही नहीं, तो हम उन्हें क्यों स्वीकार करें? तो भागवत में है राधा रानी का वर्णन, वो है इस श्लोक में। नाया राधी तो भगवान हरि ईश्वर ज्ञान नो विहाय गोविंदा पीतो ज्ञान नायर राह नायर आदितो नूनम भगवान हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविंदा कृपया मन यद रह आयादितो नूनम भगवान हरि ईश्वर
भगवान हरि ईश्वर
यन्नो विहाय गोविंदा कृपया मन यद रह। माता जी अनुवाद तात्पर्य।
इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे इससे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबों को छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। तात्पर्य श्रील येशू भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के डिसिपल्स। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि आराधित शब्द श्रीमती राधारानी के लिए आया है। उनकी टीका है, सुखदेव गोस्वामी ने उनका नाम गुप्त रखने का भरकस प्रयास किया है, किंतु उनके मुखरूपी चंद्रमा से वह स्वतः प्रकाशित हो उठा है। उन्होंने राधा का नाम ले लिया, यह श्रीमती राधा रानी की कृपा है। अतः आराधितः शब्द राधा के सौभाग्य को सूचित करने वाला दुंदुभी घोष है। यद्यपि गोपियां श्रीमती राधा रानी के प्रति ईर्ष्यालु लगती हैं, किंतु वे यह देखकर पुलकित थी कि राधा ने कृष्ण को बंदी बना लिया था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्रील रूप गोस्वामी कृत श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्रीमती राधारानी के पद चिन्हों का जो विस्तृत वर्णन है उसे उद्धृत किया है। उनके दाएं पांव के अंगूठे के नीचे जौ का चिन्ह है, उनके नीचे चक्र, चक्र के नीचे छत्र तथा छत्र के नीचे बाजूबंद कंगन है। उनके पांव के बीच से खड़ी रेखा अंगूठे तथा दूसरी उंगलियों के बीच तक जाती है। बीच की उंगलियों के नीचे कमल है और उसके नीचे ध्वजा है और ध्वजा के नीचे लता है जिसमें एक फूल लगा है। उनके पांव की चिगुनी के नीचे अंकुश है और उनकी एड़ी में अर्धचंद्र है। इस तरह उनके बाएं पांव में 11 चिन्ह हैं। उनके दाहिने पांव में अंगूठे के नीचे शंख है और उसके नीचे भाला है। उनके दाएं पांव की चिगुनी में नीचे यज्ञ वेदी है जिसके नीचे कुंडल है और कुंडल के नीचे फिर भाला है। दूसरी तीसरी चौथी अंगुलियों के तथा चिगुनी के नीचे पर्वत का चिन्ह है जिसके नीचे रथ है और एड़ी में मछली का चिन्ह है। इस तरह श्रीमती राधारानी के चरकमलों के तलवों में 19 विशिष्ट चिन्ह है।
ओम ज्ञान सिमरन्दस्य ज्ञानांजना शलाक्य चक्षुर्मिलितं वन्देहं श्रीगुरु Krishna Karuna Sindhu Sinanandu Sapta Kanchana Gaurangi Vancha Kalpa Sarvyasa Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna। भागवतम का ये श्लोक 10 स्कंद में प्राप्त होता है और इस श्लोक में राधा रानी जी का वर्णन है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यहाँ राधित नूनम, इसके द्वारा राधा रानी जी का वर्णन है। वो राधा रानी जी कौन है? भगवान के सबसे उत्तम कोटि की भक्त। कई कथाकार कहते हैं क्योंकि भागवत में राधा रानी का वर्णन नहीं है तो इसलिए हम उन्हें स्वीकार नहीं करते, पर 10 स्कंद में राधा रानी का वर्णन है। और चैतन्य चरितमृत के अनेक श्लोकों में राधा रानी और गोपियों का उत्तम भाव अज्ञान हमें प्राप्त होता है। राधा रानी कौन है? भौतिकवादी व्यक्ति सोचेंगे ये भगवान की सहेली है, और कई आध्यात्मिकवादी भी इन लीलाओं की नकल करने का प्रयास करते हैं, पर राधा रानी है सबसे उत्तम कोटि की भक्त। और सबसे उत्तम कोटि की भक्त होते हुए भी वो समझती हैं कि मेरे में कोई भक्ति नहीं, सारे भक्त मेरे से ज्यादा उत्तम है। क्या कारण है कि सुखदेव गोस्वामी जी ने राधा रानी जी का वर्णन नहीं किया और गहराई के साथ? कई संतों ने कहा है कि सुखदेव गोस्वामी के पास केवल 7 दिन थे, परीक्षित महाराज जो पृथ्वी के सम्राट थे, राज ऋषि थे, राजा भी और ऋषि, एक दिन प्यासे थे, पानी की खोज में एक कुटिया में पहुंचे इस उम्मीद के साथ कि उनका स्वागत किया जाएगा। कहा गया है शास्त्र में अगर कोई शत्रु भी आपके घर में आए उसका स्वागत करो प्रसाद के साथ, प्रसाद के साथ नहीं कर सकते तो जल के साथ, जल के साथ नहीं कर सकते तो मीठे शब्दों के साथ वो बैठने का स्थान दो। पर समय का ऋषि जो भगवान का चिंतन कर रहे थे उन्होंने देखा भी नहीं परीक्षित महाराज के प्रति, उन्होंने अपमान महसूस किया और एक मरे हुए शाम को उनके कंधे में चढ़ा दिया। जब उनके बेटे ने देखा श्रृंगी ने राजा ने क्या किया है, वो बड़ा क्रोधित हुआ और राजा को श्राप दिया। साधारण व्यक्ति को जब सूचना मिलती है कि आप कान ताने वाला काम घबरा जाते हैं, तो परीक्षित महाराज घबराए नहीं, उन्होंने संतों को निमंत्रण दिया और पूछा जिस व्यक्ति कान ताने वाला है उसे क्या करना चाहिए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी के पास ज्यादा समय नहीं था। सुखदेव गोस्वामी ने गोपियों का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर गोपियों का नाम लेते तो भक्ति भाव में, उस आनंद के भाव में अगर आ जाते तो ये भगवतम 7 दिन में समाप्त नहीं हो पाती। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने गोपियों का नाम नहीं लिया। और इस श्लोक में इनडायरेक्टली राधा रानी जी का वर्णन किया जाता है। वैसे तो भगवान की करोड़ों गोपियां हैं, करोड़ों, एक दो नहीं करोड़ों गोपियां हैं। और जैसे हमने कहा ये गोपियां कौन है? भगवान के सबसे उत्तम कोटि के भक्त। करोड़ों गोपियों में 16,108 गोपियां ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती हैं। 16,108 में 108 गोपियां और ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती हैं, और ये 108 में 8 और प्रसिद्ध मानी जाती हैं अस्त सखी, और ये 8 में 4 और प्रसिद्ध मानी जाती हैं। कौन होंगे? राधा रानी, चंद्रमणि, ललिता, ये 4 में 2 और प्रसिद्ध मानी जाती हैं, इनमें एक राधा रानी सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। तो राधा रानी के मन में सदा निरंतर एक ही भाव रहता है, वो है भगवान की सेवा। उनका जीवन का उद्देश्य यही है, भगवान की सेवा। तो राधा रानी को हमें शास्त्रों के आधार पर समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हम कह रहे थे भागवतम के दसवें स्कंद में शुकदेव गोस्वामी रासलीला का वर्णन करते हैं, भगवान की गोपियों के पर रासलीला का वर्णन कब करते हैं, जबकि उन्होंने अनेक श्लोकों के द्वारा भगवान की बाल लीला को प्रकट कर चुके हैं और उसके पश्चात वो रासलीला का वर्णन करते हैं। दूसरे शब्दों में जब हम रासलीला पर पहुंचेंगे तो हमारे मन में कोई शक नहीं रहेगा परम भगवान श्री कृष्ण कौन है। जैसे कि भगवान जब छोटे ही थे उन्होंने पूतना का वध किया, जब वो छोटे ही थे मुंह को खोला मुंह में क्या देखा, पूरे विश्व का दर्शन। जब वो छोटे ही थे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो भगवान की बाल लीलाओं द्वारा आप देखते हो कि परम भगवान श्री कृष्ण अद्भुत हैं। जैसे भगवान कहते हैं गीता में, जन्म कर्म चामे देवियों, मेरा प्रकट होना अप्रकट होना दोनों ही देवियों में। जब भगवान प्रकट होते हैं पृथ्वी पर आपके हमारे जैसे प्रकट नहीं होते। भगवान प्रकट हुए थे चार हाथों के साथ, सजे हुए गहनों के साथ और कई मनियों को पहना हुआ था जिनमें एक है विदुरिया मणि। और जब माता पिता ने कहा सादे बच्चे का रूप ग्रहण कर लो, उन्होंने सादे बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया। ये कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है, नहीं कर सकता। तो राधा रानी के विषय में हमें शास्त्रों के द्वारा समझना चाहिए। राधा रानी के हृदय में इतना स्नेह है परम भगवान के लिए कि परम भगवान खुद आश्चर्य हो जाते हैं। और परम भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में स्नेह को समझने के लिए हम जरा चैतन्य चरितमृत के 6-7 प्रसिद्ध श्लोक पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन।
गोपियों का प्रेम रूढ़ भाव कहलाता है, यह विशुद्ध एवं निष्कलंक है, यह कभी भी काम वासना नहीं होता। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कृष्ण के साथ प्रेम व्यवहार के मामले में गोपियों का स्थान दिव्य है, उनका भाव रूढ़ भाव कहलाता है। यद्यपि यह भौतिक कामवासना जैसा लगता है किंतु इसे संसारी कामवासना जैसे नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह शुद्ध तथा निर्मल भगवत प्रेम है।
अगला श्लोक।
गोपियों का शुद्ध प्रेम काम के नाम से विख्यात हो गया है। श्री उद्धव जैसे भगवान के भक्त उस प्रेम का आस्वादन करने की इच्छा करते हैं। काम तथा प्रेम के लक्षण अलग अलग होते हैं, जिस प्रकार लोहे और सोने के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। तात्पर्य, व्यक्ति को कामवासना और शुद्ध प्रेम के बीच अंतर करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उसके बीच अत्यधिक भिन्नता होने के कारण वे अलग अलग श्रेणी के हैं। वे एक दूसरे से भी उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार लोहा सोने से भिन्न होता है। अपनी खुद की इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा काम है, किंतु कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। प्रामाणिक शास्त्रों में शुद्ध प्रेम का वर्णन निम्न प्रकार से हुआ है, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यापि ध्वंस कारणे यद यद्भाव बंधन यूनो स प्रेमा परिकीर्तितः। यदि प्रेम संबंध में के ध्वंस होने का पर्याप्त कारण होने पर भी यह ध्वंस नहीं होता है तो ऐसा घनिष्ठ प्रेम संबंध शुद्ध कहलाता है। आश्रित गोपियां कृष्ण से ऐसे ही शुद्ध प्रेम से बंधी थी। उनके लिए इंद्रिय तृप्ति पर आधारित कामवासना का प्रश्न नहीं, उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य सभी प्रकार से कृष्ण को सुखी बनाना था, भले ही उन्हें अपनी स्वार्थों की बलि क्यों न देनी पड़े। उन्होंने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए अपने आत्माओं को समर्पित कर दिया था। गोपियों तथा कृष्ण के बीच रंच मात्र भी कामवासना नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक बलपूर्वक कहते हैं कि कामवासना निजी इंद्रिय भोग का विषय है वेदों में वर्णित सारे नियामक विधान जिनका संबंध लोकप्रियता पितृत्व धन आदि की इच्छाओं से है, इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इंद्रिय तृप्ति का कार्य जनहित, राष्ट्रहित, धर्म, परोपकार, नैतिक नियम, बाइबल के आदेश, स्वास्थ्य विषयक निर्देश, सकाम कर्म, लज्जा, सहिष्णुता, आत्मसुख, भौतिक संबंध से मोक्ष, उन्नति, परिवार के प्रति स्नेह या सामाजिक बहिष्कार अथवा कानूनी दंड के बहाने किया जा सकता है। गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोपरि है। वे सौंदर्य, सद्गुण, सौभाग्य तथा प्रेम में सबसे बढ़कर है। समस्त गोपियों में श्रीमती राधारानी सर्वाधिक उन्नत है। वे सबसे सुंदर और सबसे योग्य है, और उनसे भी बड़ी बात यह है कि वे कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेयसी है।
तो इन श्लोकों द्वारा हमें बड़ा महत्वपूर्ण संदेश मिल रहा है। वही संदेश ये है, सब गोपियों में सबसे प्रसिद्ध कौन है, और गोपियों, सब गोपियों का भाव क्या है, भगवान की सेवा। तो राधा रानी के पिता का नाम था वृषभानु, महाराज का नाम था कीर्तिदास। दोनों का विवाह हुआ था और बहुत साल बीत गए थे, उनके कई औलाद नहीं हुई थी। तो फिर उन्होंने देवी कत्यायनी की पूजा की और आकाशवाणी द्वारा संदेश मिला कि तपस्या का असली लाभ जब होगा जब भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, खास करके हरे कृष्ण महामंत्र का। देवी कत्यायनी उनकी तपस्या से बड़ी प्रसन्न थी। उन्होंने कहा महाराज ऋषभानु से, क्या वर चाहिए तुम्हें, मेरे से मांगो क्या वर चाहिए। महाराज ऋषभानु ने कहा, आप तो जानते हो हमें क्या वर चाहिए, आपसे क्या छुपाऊं। उनकी कोई औलाद नहीं थी। और फिर उन्होंने वर आशीर्वाद दी। तो राधा रानी प्रकट हुई थी एक लोटस में, और जब पकड़ हुई थी अंधी थी, देख नहीं पा रही थी। उसके पीछे एक बड़ा गहरा संदेश है। नंद महाराज और यशोदा माता भगवान को लेकर आए महाराज ऋषभानु के घर में। महाराज ऋषभानु ने कहा, बहुत सुंदर बेटी ने जन्म दिया है, हमने हमारे घर में प्रकट हुई है। पर अफसोस की बात क्या थी, बेटी अंधी थी। नारद मुनि ग्लोका गए, वहां देखा कि भगवान तो यहां से चल पड़े हैं भौतिक संसार, भौतिक जगत में। तो नारद मुनि आए इधर वृंदावन में और नंद महाराज से परिचय हुआ। नारद मुनि समझ गए अगर भगवान प्रकट हुए इस जगत में तो राधा रानी जी भी प्रकट हो गई होगी। तो घर घर जा रही थी, जा रहे थे, और फिर महाराज ऋषभानु के घर में आए। उन्होंने देखा ये सुंदर लड़की को, बहुत सुंदर थी पर आंखें नहीं थी। उसके भी जो भाव है, जब यशोदा माता आई अपने बेटे के साथ और बेटे को उठाया हुआ था, यशोदा माता आई तो उसने राधा रानी को भी उठा लिया। तो आप जानते हो कई बार दो छोटे बच्चे अगर एक औरत उठाती है तो एक दूसरे को हाथ भी लगा लेते हैं। तो भगवान ने जैसे ही राधा रानी को छुआ, राधा रानी की आंखें खुल गई। वो अंधी थी केवल क्योंकि वो चाहती थी पहला व्यक्ति जो वो देखे पृथ्वी पर किसको देखे, भगवान को। एक और कथा है इसके पीछे, जब भगवान पृथ्वी पर आने का भाव प्रकट कर रहे थे, उन्होंने राधा रानी को भी कहा तुम्हें भी प्रकट होना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा मैं प्रकट नहीं होना चाहती क्योंकि मैं आपके अलावा किसको नहीं देखना चाहती। भगवान ने यकीन दिलाया तुम देखोगे सबसे पहले किसको देखोगे, मुझे ही देखोगे। तो जब राधा रानी प्रकट हुई थी, अंधी थी, जैसे भगवान कृष्ण वहां पहुंचे वो ज्ञान हो गए। तो राधा रानी जी के मन में गोपियों के बीच में केवल एक ही भाव है भगवान की सेवा। और जब राधा रानी और गोप कहती हैं भगवान से इस व्यक्ति की भक्ति स्वीकार करो, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए वृंदावन में क्या कहते हैं, जय राधे है। अब देखते हो हर कोने में। तो राधा रानी के विषय में हमें ये समझ लेना चाहिए वह क्या, सबसे उत्तम कोटि की भक्त, जिनके मन में केवल एक ही भाव सदा है भगवान की सेवा। और ये जो गोपियां हैं उनके मन में क्या भाव है, उनके मन में एक ही भाव है कि वो राधा रानी का सहयोग दें कृष्ण की सेवा करने में। कोई भौतिक भाव इनके हृदय में नहीं है, ये हमें बड़े ध्यान से समझ लेना चाहिए। तो राधा रानी जी की अनेक लीलाएं हैं और राधा रानी जी के मन में सदा एक ही भाव रहता है भगवान की सेवा, और कोई भाव नहीं। मैं भगवान को एक समय जब भगवान द्वारका में थे तो उन्हें बहुत ही सिर दर्द हो रही थी। भगवान ने नारद मुनि से कहा मुझे बड़ी गहरी सिर दर्द हो रही है, मुझे मेरे भक्त के चरणों की क्या चाहिए, धूल चाहिए। और अगर तुम भक्त के चरणों की धूल लाओगे तो फिर ये सिर दर्द दूर होगी, मुझे धूल आज शाम तक चाहिए। नारद मुनि ने कहा आपके तो इतने भक्त हैं धूल आने में कोई समस्या नहीं होगी। तो नारद मुनि पहले गए किनके पास, पहले गए रुक्मिणी के पास। रुक्मिणी से कहा भगवान को सिर दर्द हो रही है, भगवान चाहते हैं कि आपके चरणों की धूल, अपने भक्तों की धूल उनके माथे पर लगे, जैसे आप लोग बाम लगाते हो सिर दर्द दूर करने के लिए। रुक्मिणी ने कहा ये बड़ा कठिन कार्य है, अगर हमारे चरणों की धूल भगवान के माथे में लग जाएगी तो हमें नरक में जाना पड़ेगा, ये तो बड़ा कठिन कार्य है, ये मैं नहीं कर सकती। नारद मुनि आश्चर्य हो गए थे। वे नारद मुनि गए सत्यभामा के घर, सत्यभामा से भी यही कहा। सत्यभामा ने कहा मैं अपने चरणों की धूल नहीं दे सकती क्योंकि बड़ा भयंकर परिणाम है इसका, हमें नरक में जाना पड़ेगा। फिर नारद मुनि गए ज्ञानी इसके पास, योगी इसके पास, सबने इनकार कर दिया। फिर नारद मुनि लौटे भगवान के पास। नारद मुनि ने कहा मैंने सबके पास गया, मैंने सोचा था कि सारे भक्त बड़ी सरलता से उत्साह के साथ अपने चरणों की धूल देंगे, सबने इनकार कर दिया, सबको भय था अगर उनके चरणों की धूप आपके माथे में लगेगी तो फिर भयंकर परिणाम होगा, नरक में जाना पड़ेगा। भगवान ने पूछा तुम क्या ब्रजवास इसके पास भी गए थे क्या? नारद मुनि ने कहा सब जगह गया तो उनके पास नहीं गया। तो भगवान ने कहा उनके पास जरूर जाओ। नारद मुनि पहुंचे, कहां पहुंचे? वृंदावन। जब वो वृंदावन पहुंचे उन्होंने देखा सारे राधा रानी और गोपियां बैठे थे वृंदावन में, पर किस किस तरफ? यहां से द्वारका सामने नजर आए उस डायरेक्शन में। जब भगवान नारद मुनि ने उनसे कहा भगवान की सिद्धत हो रही है, भगवान चाहते हैं अपने भक्तों के चरणों की धूल। पहले गोपियों ने पूछा आप आए हो द्वारका से, द्वारका से संदेश ला रहे हो हमारे लिए? तो गोपी नारद मुनि ने कहा भगवान की सिद्धत हो रही है, भगवान तो भगवान ने क्या तुम्हें भेजा है जंगल से कुछ दवाइयां लाने के लिए? नारद मुनि ने कहा दवाइयां नहीं, तुम्हें तो भक्तों के चरणों की धूल चाहिए, ले जाओ हमारी धूल चरणों की धूल। नारद मुनि ने उनकी परीक्षा ली, तुम विश्वास करते हो तुम धूल देने को तैयार हो चरणों की? क्योंकि अगर धूल दोगे याद है तो क्या परिणाम होगा, तुम लोग नरक में जा सकोगे। गोपियों ने क्या कहा? गोपियों ने कहा अगर हमें नरक में भी जाना पड़े अब जाने को तैयार है, हमारे मन में केवल एक ही भाव है, वो क्या भाव है? विष्णु के सेवा। तो नारद मुनि से गोपियों ने पूछा आप ये धूल उठाकर कैसे ले जाओगे वृंदावन से द्वारका? नारद मुनि ने कहा मैं अपने भक्ति के सिर पर, भक्ति अपने सिर पर ये धूल को उठाकर ले जाऊंगा। तो नारद मुनि पहुंचे द्वारका धूल लेकर अपने माथे में सिर पर। नारद मुनि तो भगवान ने पूछा तो ब्रजवासियों को मिले तुम? और को क्या कहा नारद मुनि ने? मैं मिला, जब मैं उनसे मिला वृंदावन में वो बैठे थे उस दिशा में जहां द्वारका नजर आता है, और मैंने उनसे कहा तुम जानते हो इसका क्या परिणाम हो सकता है? गोपी ने क्या कहा? हम नरक में जाने को तैयार हैं, हमारे मन में केवल एक ही भाव है, क्या भाव? भगवान की सेवा। ये भाव होना चाहिए हम सब में। राधा रानी हालांकि बड़ी प्रसिद्ध भक्त हैं, उनका बड़ा विनम्र भाव है, वो हमेशा यही सोचती हैं कि ये जो भक्त है दूसरा वो मेरे से भी अच्छा भक्त है। तो इसलिए भक्त जो हैं सदा राधा रानी की कृपा मांगते हैं। एक समय गोपाल चंपू में कथा है, राधा रानी और गोपियां मानसी गंगा पहले बहुत बड़ा होता था, आजकल छोटा हो गया है। तो गोपियां और राधा रानी की इच्छा थी मक्खन दूध बेचे मथुरा जाकर, तो उन्होंने नाव वाले से सौदा किया वहां मथुरा पहुंचा दो ये कीमत होगी। नाव वाले ने कहा थोड़ी देर बाद मुझे भूख लग रही है कुछ खाने के लिए दो। उन्होंने जो थोड़ा सा खाने को दिया, थोड़ी देर बाद नाव चला रहा था कहने लगा अब मुझे नींद आ रही है मुझे सोना पड़ेगा। गोपियों ने कहा नाम चलाओ नहीं तो तुम्हें उठाकर हम फेंक देंगे नाग सागर में। फिर नाम वाले ने कहा, पर लगता कि नाम में बहुत भारी बोझा हो गया है, अगर तुम यहां बहुत ज्यादा सामान है फेंकोगे नहीं नाव डूब जाएगी। राधा ने गोपियों ने पहले तो दूध मक्खन फेंका, फिर सागर में गहने भी फेंक दिए। फिर नाव वाला कहने लगा, लगता है अभी तूफान आ रहा है, नाव डूबने की संभावना है। राधा ने घबरा गई, नाव डूबने की संभावना है। राधा ने नाव वाले के गले में पांव हाथ रखा, वो क्या देखा ना, वो कौन था, वो भगवान कृष्ण थे। तो इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हैं, और राधा रानी के मन में सदा एक ही भाव रहता है, भगवान की सेवा। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने एक समय था जब उनका समाज में बड़ा ऊंचा स्थान था रूप और सनातन का, पर उन्होंने सब सुविधाएं त्यागी और चैतन्य महाप्रभु जी के आदेश पर वृंदावन में आए। यहां की वो मधुकरी करके जी रहे थे, तो वृंदावन में रूप गोस्वामी भी मधुकरी करते थे और सनातन गोस्वामी भी। रूप गोस्वामी की इच्छा थी कि अपने भाई के लिए खीर खिलाया जाए, पर उनके पास सुविधाएं नहीं थी। अब अंदाजा लगाओ, एक समय इनका समाज में इतना ऊंचा पद था, पर उन्होंने सब सुख त्यागा भगवान की सेवा के लिए। तो रूप गोस्वामी की इच्छा थी कि खीर खिलाया जाए भाई को, पर उनके पास सुविधा नहीं थी। राधा रानी समझ गई क्या भाव है उनका, तो एक खूबसूरत लड़की के रूप में राधा रानी जी पहुंची रूप गोस्वामी की कुटिया में, दूध चीनी सब सुविधाएं लेकर। और राधा रानी ने कहा, आज मधुकरी करने आप नहीं गए, मैं ये सुविधाएं ले आई हूं, आप बोलो तो मैं खीर बना लेती हूं। राधा रानी को दुर्वास मुनि द्वारा एक वर प्राप्त हुआ था, वर ये था जो भी वो प्रसाद जो भी चीज बनाएगी वो चीज इतनी मीठी होगी कि स्वर्ग में भी उसकी तुलना नहीं हो सकती। जो व्यक्ति उसे खाएगा उसकी आयु भी लंबी होगी, भक्ति भावना प्राप्त होगी। राधा रानी ने बड़ी अच्छी खीर बना ली और बनाकर चले गए, और फिर सनातन गोस्वामी जब आए उनके भाई, उन्होंने खीर खाई, उन्होंने पूछा ये खीर किसने बनाई है, ऐसा टेस्ट तो कभी हमने देखा ही नहीं, किसने बनाई है। रूप गोस्वामी ने पूरा वर्णन सुनाया तो सनातन ने कहा, वो लड़की जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो वो कौन थी, श्रीमती राजरानी थी। उन्होंने अपने भाई को डांटा, भाई को कहा तुमने राधा रानी जी से सेवा ले ली, ये बड़ा अपराध है। जो शुद्ध भक्त हैं उनके मन में ये भाव रहता है भगवान की सेवा, पर भगवान की सेवा भगवान से सेवा लेना नहीं। आप माधवेन्द्रपुरी की कथा पढ़ते हो, एक एक समय एक ग्वाला ने दूध का मटका दिया था। माधवेन्द्रपुरी ने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा समाप्त की थी, थके हुए थे गोविंद कुंड में, और एक दूध का मटका दिया था ये कहते हुए कि लगता है तुम थके हो, दूध पियो, मैं लौट कर मटका ले लेता हूं। माधवन पुरी ने दूध पीकर राह देखी पर वो वाला नहीं लौटा, तो माधवन पुरी को हल्की सी नींद आ गई। वो नींद में माधवन पुरी ने देखा वही ग्वाला जैसे दूध लाया था, आदेश दे रहा है कि मुझे इस स्थान में दबाया हुआ है, मुझे वहां गर्मी लग रही है, वहां से निकाल कर वही स्थापना करो। माधवेंद्र पुरी को जब पता लगा कि वो ग्वाला जो दूध लाया था स्वयं भगवान थे, वो शर्मिंदा हो गए। तो उन्हें भगवान से सेवा ली। तो भक्तों का भाव होना चाहिए, निष्काम भाव से हम भगवान की सेवा करें। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांता, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांता। निष्काम भाव से सेवा करेंगे तो हमेशा संतुष्ट रहेंगे, और सकाम भाव से सेवा करोगे तो संतुष्ट रहना कठिन रहेगा। एक समय रघुनाथ दास गोस्वामी, बहुत गर्मी का मौसम था, धूप में बैठकर अपना भजन कर रहे थे। राधा रानी जी आई पीछे से, साड़ी को छाता के रूप में रखकर रघुनाथ दास की सुरक्षा कर रहे थे, धूप से बचा रहे थे। और सनातन गोस्वामी ने देख लिया कि राधा रानी जी रघुनाथ दास की सुरक्षा कर रहे हैं, उन्होंने डांटा राधा रानी जी से सेवक में भी। तो राधा रानी के मन में सदा है भगवान की सेवा, और कृष्ण भगवान के मन में क्या है, अपने भक्तों की सेवा। एक समय एक गरीब ब्राह्मण आया था भगवान के पास, मैं अपनी बेटी का विवाह कराना चाहता, मेरे पास धन नहीं है। तो भगवान ने इतना राधा रानी जी का वजन था उसके बराबर के गहने दे दिए किसे, एक ब्राह्मण। नारद मुनि बार बार राधा रानी के घर जा रहे थे, भगवान ने राधा रानी से कहा, नारद मुनि तुम्हारे घर बार बार आ रहा है, संभल के रहना, वो उन्हें कुछ ऐसी बात कर देगा जिससे हमारा रिश्ता खराब भी हो सकता है। तो भक्त गोपियों ने प्रबंध किया था राधा कृष्ण का उत्सव झूले में। इससे पहले नारद मुनि ने भगवान को प्रसन्न किया था अपनी वीणा के द्वारा। भगवान ने पूछा था, हे नारद मुनि मांगो मेरे से क्या वर चाहिए। नारद ने कहा, ये वर मैं ठीक समय पर मांग लूंगा, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो राधा रानी तैयार हो रही थी उत्सव में आने के लिए, तो नारद मुनि भगवान पर के पास गए और कहने लगे, आपको पता है ना, आपने मुझे कहा था कि वर दोगे। भगवान ने कहा, हाँ, मैं चाहता हूं कि आप ललिता के साथ झूला करो। तो भगवान की इच्छा तो नहीं थी, वो तो राधा रानी की राह देख रहे थे। पर नारद मुनि ने निवेदन किया, तो जब भगवान ललिता के साथ झूला कर रहे थे, तो नारद मुनि पहुंच गए नारद राधा रानी के पास, कहने लगे, तुम तैयार हो रहे हो किस लिए। मैं झूले के उत्सव के लिए जा रही हूं। ये भगवान तो ललिता के साथ कर रहे हो उत्सव। तो राधा रानी ने देखा क्रोधित हो गई थी, तो भगवान ने फिर बाद में कहा। ये सब नारद मुनि की लीला थी, क्योंकि तुम तैयार हो रहे थे और नारद मुनि ने मेरे से एक वर लेना था, तो उसको खुश करने के लिए मैंने ललिता के साथ जुड़ा किया था। तो इस प्रकार राधा रानी ये भगवान की अनेक लीला है। तो हम भक्त क्या करते हैं, राधा रानी जी की प्रार्थना करते हैं क्या कि उनके द्वारा कृपा प्राप्त हो। जब राधा रानी कहती हैं किसी भगवान से ये भक्त अच्छा भक्त है, इसे स्वीकार करो, भगवान क्या करते हैं, भगवान उस भक्त को स्वीकार करते हैं। तो राधा रानी जी के अनेक गुण हैं, उनमें 25 प्रसिद्ध गुण हैं, समय का अभाव है। और राधा रानी जो है अत्यंत दयालु हैं, तो हम राधा रानी जी का भाव कैसे प्रकट करते हैं, आदर महामंत्र के उच्चारण से। तो जो गोपियों का भाव है ये सबसे उत्तम भाव है। और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे इसने कुछ समझने के लिए, राधा रानी जी प्रकट होती हैं भगवान की हलादिनी शक्ति के द्वारा, और उनका एक ही उद्देश्य है भगवान की सेवा। और भगवान कृष्ण खुद समझ नहीं पाते कि राधा रानी जी का कितना गहरा स्नेह है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण आनिया, यही राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु एक दिन अपने कमरे में गोपियों के प्रति आदर प्रकट कर रहे थे, गोपी 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 गोपी। एक संस्कृत के विद्यार्थी ने कहा, गोपी गोपी क्या बोल रहे हो, हरे कृष्ण बोलो। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि लोग उनके भाव को नहीं समझ पा रहे, फिर उन्होंने जाकर संन्यास ग्रहण किया। तो राधा रानी जी जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हो, फिर महामंत्र के उच्चारण में हरि का नाम ले हरे, इससे हम क्या कर रहे हैं, राधा रानी जी को पुकार रहे हैं। तो रथदशमी के शुभ अवसर पर हम भक्तों को क्या करना चाहे, हमें राधा रानी जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि मन में भक्ति भावना हो। जिस प्रकार का भाव राधा रानी और गोपियों में है वैसा भाव प्रकट हो। प्रकट हो सकता है, कैसे प्रकट होगा, अगर हम ध्यान से महामंत्र का जाप करेंगे। तो आज के दिन दशमी के शुभ अवसर पर हमें राधा रानी जी की कृपा मांगनी चाहिए कि हमारे में भक्ति भावना बढ़े, भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस गहरे स्नेह को समझने के लिए। जब आप महामंत्र का उच्चारण करते हो तो इसके द्वारा राधा रानी जी का भी नाम ले रहे हो। आप सब भक्तों से निवेदन है, राधा रानी जी के शरणागत हुई है, राधा रानी जी अत्यंत दयालु हैं, इसलिए भक्त क्या कहते हैं वृंदावन में, जय राधे जय राधे। राधा रानी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, महामंत्र का उच्चारण। तो महामंत्र का उच्चारण कीजिए, जितने ध्यान से करेंगे उतनी तेजी के साथ भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। राधा रानी की हरे कृष्णा महामंत्र के उच्चारण से हम राधा रानी जी किसी से भीख मांग रहे हैं, हमें भक्ति दीजिए भक्ति दीजिए भक्ति दीजिए। और जब राधा रानी देखती हैं कि हम श्रद्धा से प्रयास कर रहे हैं, जब राधा रानी कृपा देती हैं जिसके द्वारा भक्ति में आगे बढ़ सको। हरे कृष्णा।